अपने राज्य में सुख पूर्वक रहो, अपने जिंदगी से आप संतुष्ट रहो। राम के साथ में बैर विरोध करके आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। राम का पराक्रम किसी के द्वारा जाना नहीं जाता है, न तुम समर्थ है, तुम राम के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हो। एक बात कहता हूँ, देखो तुम राम से युद्ध की बात सोचते हो, लड़ाई की बात सोचते हो, राम से बैर विरोध की बात सोचते हो, तुम राम के साथ मित्रता की बात क्यों नहीं सोचते हैं? तुम ये भी तो सोच लो कि राम के साथ अपनी मित्रता हो जाए तो कितना अच्छा रहे, ये भी तो बात तुम सोच सकते हो। किम उद्यमम व्यर्थमम व्यर्थम इमम कृत्वा, जितने जितने तुम उपाय सोचते हो ये सब उपाय व्यर्थ हो रहे हैं। इसलिए जो तुम चाहते हो उसको तुम ठीक ढंग से सोच करके तुम काम करो। तुम्हारे मंत्रियों ने अच्छी सलाह नहीं दी है, इस सलाह के अंदर क्या तुमने विभीषण से सलाह ली है क्या? यदि इस सलाह के अंदर विभीषण का क्या मत है? विभीषण जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुषों से आप सलाह लीजिए। हर काम का दोष और गुण, इसका अर्थ क्या निकलेगा, इस पर विचार कीजिए। इसलिए महाराज मैं तो आपसे फिर कहता हूँ कि राम की और आपकी बराबरी नहीं है। आप उनके साथ युद्ध करना उचित कैसे मान रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हे निशाचरों के राजा, आप अपने जीवन को आनंदित करने के लिए राम को आप एकदम जो है इस प्रकार से आप छोड़ दीजिए, युद्ध करने का आप विचार छोड़ दीजिए। देखो मैं भी हजार हजार हाथियों का बल रखने वाला इस पृथ्वी के ऊपर पहले मैं खूब निर्भय होकर घूमता था। पर्वत के समान मेरा देह था, नीला काजल कैसा होता है ऐसा मैं था। तपे हुए सोने के कुंडल मेरे कान में जगमगाते थे, सारी त्रिलोकी मुझे देख करके डरा करती थी। मैं मुकुट धारण किया हुआ और हाथ में परिघ लिया हुआ जब जमीन पर लंबे लंबे डग मारता हुआ चलता था, उस समय कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकता था। इस प्रकार से मैं एक बार दंडकारण्य में गया, वहाँ ऋषि मुनियों का मांस खाता था और मुझे वहाँ ऋषि मुनियों को मारने में कोई भय नहीं लगता था। एक बार विश्वामित्र जी एक यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के अंदर मैं और सुबाहु अपने साथ के राक्षसों को ले जाकर उस यज्ञ के अंदर तरह तरह की हमने बाधा पहुंचाई। हम लोगों के कारण से विश्वामित्र जी डर गए। डरे हुए विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या गए। अयोध्या जाकर वहां के राजा दशरथ से उन्होंने प्रार्थना की कि हे महाराज, पर्व काल पर जब मैं यज्ञ करता हूँ तब मारीच वहां आकर घोर उपद्रव करता है, आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए और मारीच का वध आपके पुत्र के द्वारा मुझे कराना है। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र के साथ अपने अपने पुत्र को भेज दिया, पर बड़ी मुश्किल से भेजा। कारण कि दशरथ जी महाराज का दशरथ जी का राम जी के अंदर बहुत मोह था। दशरथ जी ने कहा, हे विश्वामित्र जी, मैं चलता हूँ, मेरी सेना चलती है, राम तो अभी बहुत छोटी उम्र का है, इसलिए आप इसको यहीं रहने दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं दशरथ, ये मारीच राम के बिना किसी के द्वारा मरने वाला नहीं है, देवताओं से भी मरने वाला नहीं है, अतएव या तो तुम राम को दे दो नहीं तो हम खाली हाथ ही चले जाएंगे। लेकिन दशरथ जी महाराज ने ऋषि को खाली हाथ नहीं जाने दिया और राम को उनके साथ में भेज दिया। राम जी महाराज वहाँ दंडकारण्य में आए, विश्वामित्र जी के आश्रम में। वहाँ आकर राम जी धनुष लेकर के खड़े हो गए, बाण लेकर खड़े हो गए। राम के साथ में लक्ष्मण भी थे। अब राम धनुष ताने में इस प्रकार से थे, हम लोग आए, हमने देखा कि छोटे बच्चे ये हमारा क्या करेंगे, हम खूब ठहाका मारते आए, अपने बल का हमारे में बड़ा घमंड था, अतएव हमने हमारा स्वरूप बिगाड़ करके और आंख निकाल करके बच्चों को डराया और धमकाया। हमने देखा कि हमारे देखने मात्र से भग जाएंगे, परंतु यहाँ तो उल्टी बात हुई। हमने जिसको बालक समझा था वे तो वहाँ पर वेदी के ऊपर हमारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, और जो ही मैं उनकी तरफ आंख निकाल करके और अपने शस्त्र लेकर के राम के ऊपर टूट पड़ता हूँ, उससे पहले ही राम जी ने कस करके एक बाण लगाया। उस बाण से मैं उल्टा पुल्टा यूं चलता चलता सिर ऊपर और पैर नीचे, फिर सिर ऊपर पैर नीचे, यूं चक्कर खाता 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 मैं देखो यहाँ आकर के गिर गया हूँ। तब से मैं राम का पराक्रम खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए उसके बाद आपको ही पता है, बेहोश अवस्था में मैं लंका में आया था, फिर यहाँ पर मेरा सब प्रकार से प्रबंध किया गया, अब मैं जाकर स्वस्थ हुआ हुआ हूँ। इसलिए राम के सामने तो जाना के लिए मैं आपको बार बार मना करता हूँ, क्योंकि राम का पराक्रम तो मैंने अपने शरीर से सहा है और देखा है, ऐसा कोई मेरे साथ में युद्ध करने वाला दूसरा देवताओं में भी नहीं था। हे महाराज, यदि आपको लंका के अंदर तरह तरह के उत्सव करने हो, यदि आपको लंका में तरह तरह का आनंद लेना हो, यदि आपको लंका में अपना नाम कमाना हो, यदि इस लंका को चिरकाल तक सुरक्षित रखना हो, यदि आप अपने बाल बच्चे भाई बंधु परिवार के साथ खूब आनंद से रहना चाहते हो, तो आप इस पाप से निवृत्त हो जाइए। और यदि आप इन राक्षसों के बीच में बैठकर दिव्य आभरणों से विभूषित होकर राज्य का संचालन करते हैं, तो आप राम के साथ में युद्ध करने का विचार छोड़ दीजिए। हृतदारान सदारांश्च दशे विद्रवतो दिशः हतशेषान अशरणान रक्षसी त्वं निशाचरान। देखो इन निशाचरों की आगे जाकर यदि तुमने राम की सीता का हरण किया तो वो दुर्दशा होगी। ये तुम्हारे निशाचर इधर उधर फिरते रहेंगे, इनके बाल बच्चे स्त्रियां सबकी दुर्दशा हो जाएगी। राम के बाणों के सामने कोई टिकने वाला नहीं होगा। लंका एक दिन धू धू करके जल करके राख हो जाएगी। रावण दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने के समान नान्यत पाप तरम महत, इससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। इसलिए तुम्हारी हजारों स्त्रियां हैं, वहीं पर तुम संतुष्ट रहो, और सीता के ऊपर दृष्टि डालना तुम्हारे लिए बहुत घातक चीज होगी। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा कुल का नाश होगा, और तुम महान संकट के अंदर फंस जाओगे। तुम मेरे खास अपने हो रावण, इसलिए मैं तुमको बार बार ये बात कहता हूँ कि यदि तुमने सीता के साथ में सीता को यदि यहाँ तुम ले आए और सीता को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया, तो तुम भाई बंधुओं से समझ लो कि अब मैं मर चुका हूँ। अपनी मृत्यु को अपने पास में देखो तो आप भले ही देख लो, अन्यथा ये चीज आपके लिए उचित नहीं है। और देखो मैं तुमको और एक बात कहता हूँ, मुझे मालूम चला कि राम जो है वो दशरथ जी के वचनों को सत्य करने के लिए दंडकारण्य में आ गए हैं। एक बार मेरे दिमाग में तुम्हारे ही समान कुराफात पैदा हुई। मैंने दो राक्षसों को अपने साथ में लिया। मैंने सोचा कि राम का बदला लेना है। हम दो राक्षसों के साथ रवाना हुए तो हम तीन राक्षस हो गए। तीनों राक्षस मृग बनकर के दंडकारण्य में गए, जहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता तीनों विराजमान थे। वहाँ हम तीन जो है ये राक्षस हिरण बनकर के बहुत बड़े हिरणों के झुंड के अंदर चले गए, और वहाँ मैं बड़े तीखे तीखे दृष्टि से राम की ओर देख रहा था। मैंने देखा कि इतने के अंदर राम मुझे थोड़ी पहचान लेंगे। वो झुंड जब आगे जा रहा था तो मैं पीछे रहा, पीछे रह करके अपने दोनों साथियों से कहा कि तुम भी मेरे साथ रहो, और उसके बाद मैं राम के वहां पर जाकर उसको यूं देखने लगा और विचार किया कि मेरे तीखे तीखे सींग हैं, इन सींग से मैं राम के पेट के अंदर प्रहार कर दूंगा, क्योंकि राम को ये थोड़ी पता है कि ये मारीच है। ऐसा विचार करके मैं वहां पर गया। वैसे मैंने राम के मिलने से पहले और भी कई अग्निहोत्र वगैरह करने वाले लोग थे, तपस्वी लोग थे, उन सबको मैंने परेशान किया, सबको पीड़ित किया, उनका मांस खाया, किसी को मारा, किसी का खून पिया। ये सब काम करने के बाद जब हम राम के पास में आए, तब राम ने मेरी ओर देख लिया। मेरी और राम की एकदम दृष्टि आंख से आंख मिल गई। राम ने लक्ष्मण से कुछ कहा, लक्ष्मण और राम ने कुछ बात की, और उस बात करने के बाद तापसोयम इति ज्ञात्वा पूर्ववैरम अनुस्मरण, मैंने तो देखा कि ये तो तपस्वी का रूप बनाया हुआ है, अब वो राम थोड़ा ही होगा, इसलिए मैंने तो पिछला बैर याद रखा और इनको मेरी करतूतों का ज्ञान हो गया। उसके बाद उन्होंने निशाना लगा करके हम तीनों के लिए तीन बाण छोड़े, तीनों बाणों में दो बाण मेरे साथियों के लगे, वो तो वहीं पर धराशायी हो गए और मैं तो फिर उस राम की कृपा से बच निकला। उन्होंने बचाया तभी मैं बचा, अन्यथा मैं बच थोड़े ही सकता था। यहाँ आकर के बैठ गया, अब यहाँ आकर मैं अपने पास में माला रखता हूँ और एक ही बात का रट करता हूँ कि राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम,
राम राघव राम राघव राघव पाहि माम, कृष्ण के तव कृष्ण के तव
राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम,
राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम।
इस प्रकार से मैं तो यहाँ बस राम का नाम लेता हूँ और उनके दिए हुए जीवन को स्वीकार करके मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित प्राप्ति जीवितम, राम ने किसी प्रकार से मुझे जीवित कर रखा है, इसलिए मैं तो स्वयं अब देखो तपस्वी बना हुआ हूँ। तपस्वी बन करके राम का स्मरण करता हूँ और स्मरण करता हूँ, इतना ही नहीं है रावण, मैं ध्यान पूर्वक स्मरण करता हूँ, ध्यान देना हूँ। देखो कहने वाला कोई हो लेकिन कहता क्या है ये सोचना चाहिए, मारीच है राक्षस है कुछ भी है वो जाने, उसकी बात पर कहो कि मैं राम का नाम लेता हूँ और वृक्ष के पत्ते पत्ते में राम को देखता हूँ, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि, और मैं यही देखता हूँ कि वो धनुष लिया हुआ है और काले मृग का चर्म पहन रखा है, मैं हजारों हजारों जगह राम ही राम को देखता हूँ, सब जगह राम को देखता हूँ, मेरे लिए सारा जंगल राममय हुआ हुआ है। हे राक्षस राज क्या बताऊं, आप आए हो, आप यूं खड़े हो, मैं आपके अंदर भी उस राम की छवि को देखता हूँ, आपका जो कलेवर उसमें यहाँ मैं राम को देखता हूँ, रामम उद्भ्रमामि, मैं कभी कभी स्वप्न में राम को देखता हूँ तो एकदम जाग पड़ता हूँ और जग करके राम राम ऐसे में बोलने लगता हूँ, मुझे तो कोई भी शब्द में जो रे पहले नाम आता है उस रे नाम से मुझे डर लगता है, जैसे रत्न रथ, ऐसे महाराज आपका भी नाम है रावण, रे आ गया मेरे मन में डर लगता है क्योंकि मैं उसके प्रभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं न तो बलि को कुछ समझता हूँ न नमुची को कुछ समझता हूँ, मैं राम को सबसे ज्यादा बलवान मानता हूँ, इसलिए हे रावण आप इस राम जी के साथ में सीता को लाने की जो ये आपने सोच रखी इस बात को यही समाप्त कर दो। देखो संसार में बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो दूसरे की गलती से स्वयं दुख पाया करते हैं, सोहम परापराधीन विनशेयम निशाचरे, देखो निशाचर रावण तुम्हारी गलती से मेरा नुकसान होगा, अतः मैं तुमको स्पष्ट मना करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी हालत में राम के वहां सीता के हरण करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। राम बहुत बलवान है और जो है महान तेजस्वी है, सारी त्रिलोकी मिल करके एक तरफ खड़ी हो जाए तो भी रावण राम का कुछ नहीं कर सकते। एक राक्षसी, ठीक है तुम्हारी बहन है तो क्या हुआ, है तो वो शूर्पणखा, उसको जानते हैं, उसके पीछे और खर के पीछे 14,000 सैनिकों के पीछे राम के साथ में तुम बैर मत करो। सच पूछा जाए तो राम ने तो अभी लंका का नाम तक भी नहीं लिया है, वो अपनी जगह बैठा है, तुम तुम्हारी जगह बैठे हो। अब बताओ राम के विषय में हमने तुमको इतनी बात कही, कुछ तो तुमने विचार किया होगा। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वम को रामस्य व्यतिक्रमः, राम के ऊपर किसका बल चल सकता है, बताओ कौन राम से बड़ा बलवान हो सकता है। देखो रावण, मैंने आपको एक एक बात अक्षर से सत्य कही है, मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव में राम के साथ युद्ध करके देखा है, लड़ाई करके देखा है, उसके अनुसार कही है। एक बार नहीं, मैं दो बार राम से पराजित हुआ हुआ आया हूँ। इसलिए हे रावण, मैं तुम्हारा सदा से ही प्रेमी रहा हूँ। तुम अपने भाई बंधुओं के साथ लंका में आराम से रहो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी स्थिति में सीता के हरण की बात मत सोचो। मारीच की बहुत युक्ति युक्त बातें थी और वे बातें बहुत ही सुंदर थी और समर्थ थी, लेकिन रावण तो भाई मरने वाला था ना, मरने वाले आदमी को कोई दवाई देवे तो वो व्यक्ति मुंह बंद कर लेता है, दवाई ले दवाई मुंह बंद कर लेता है। ऐसे वो मरने वाले के समान था, उसने उसकी बात मानी नहीं। बहुत हितकारी बात थी, इस बात के द्वारा उसका बड़ा भारी हित हो सकता था। वो राम के साथ मित्रता करके रावण बहुत बड़ा काम कर सकता था, परंतु माना नहीं, उल्टे वो पर बोलने लगा, ए मारीच क्या बोलते हो, तुम बहुत बड़े गंदे कुल में दुष्कुल में पैदा हुए हो मारीच, तुमको बोलने का कुछ भी होश नहीं है। मनुष्य को बात वहां बोलनी चाहिए जो बात उसकी सफल होती हुई दिखती हो, तुम तो ऊसर भूमि में बीज बोने के समान मुझे ज्ञान देने लग गए। मेरे पास तो आगे भी बहुत ज्ञान है, मैं तो ज्ञान से उफना हुआ पड़ा हूं। डूमरो घर शुभराज भरिड़ो रेवे है तो तद वाक्य न तुम माम सक्यम भेतुम रामस्य संयोगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः। तुम उस राम की महिमा करते हो, उस मूर्ख की महिमा करते हो, उस पापी की महिमा करते हो, और वो मनुष्य तो है क्या है, उस मनुष्य की तुम महिमा करते हो। अरे तुमने कितनी लंबी चौड़ी महिमा की, हम तो एक बात में जो है निर्णय करके बता देते हैं। खूब चावल हो, कड़ा भरा चावल हो, वो चावल कच्चा है कि पक्का है, तो एक चावल लिया और मसल के देख लिया कि आप पक गया अथवा थोड़ी देर है अभी इसमें। ऐसे ही इतना सा ही तुम सोच लो, ज्यादा मत सोचो कि उसके माता ने पिता ने योजना बना करके उसको राज्य से निकालने का षड्यंत्र रचा और उसने कह दिया कि मैं तो धर्म मान करके राज्य छोड़ करके जंगल में जाता हूं। यही तो राम की अकल है ना। यदि राम में इतनी बड़ी ताकत होती कि त्रिलोकी एक तरफ है, राम एक तरफ हो जाए तो भी कुछ ना बिगड़े, ऐसा तुम बोलते हो, तो राम वहां धनुष बाण लेके खड़े हो जाते कि आओ कौन है मेरे को अयोध्या से राज्य हटाने वाला, तो कोई हटा सकता था क्या? इसका मतलब राम में ताकत नहीं है। तुम कहते हो कि लक्ष्मण है वो राम पर अनुराग रखने वाला है, लक्ष्मण है वो राम का भक्त है, तो उस समय लक्ष्मण की भक्ति कहां चली गई? तुम कहते हो कि सीता संसार में सबसे श्रेष्ठ नारी है, वो नारी रत्न है, तो सीता को चाहिए था कि वनवास तो राम जी को मिला है, राम जी की मैं अर्धांगिनी हूँ और राज्य के ऊपर आधा हक मेरा होगा, मैं राजरानी बनूंगी, मुझे आप राजगद्दी पर बैठाओ, उसकी बात को कौन मना कर सकता था? इसका मतलब इनके अंदर कोई अकल नहीं है। मैं तुमसे कोई ज्ञान लेने के लिए नहीं आया, मैंने ये नहीं पूछा कि सीता का हरण करूं या न करूं, करने में क्या लाभ है और न करने में क्या लाभ है, तब तो तुम मुझे इतना बड़ा व्याख्यान दे। अपायम वा उपायम वा, किस कार्य को करने में मुझे लाभ है, किस काम को करने में नुकसान है, तुम अपनी सम्मति बताओ, तब तो तुमको कहनी चाहिए थी। मैंने तो केवल इतना ही कहा है कि सीता का हरण करने के लिए मेरे साथ चलो, उसके बाद तुमको मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो न व्यावर्त तुम शक्या सेंद्रय रपि सरारु रही। मुझे तो भाई मारीच ऐसा लगता है कि तेरी बुद्धि के अंदर कोई विकार हो गया, अब तेरी बुद्धि को कोई बदल नहीं सकता है। एक दो बाण उसके खाली है जिसमें तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब हो गई। अच्छा तुम जाए मरो करो कुछ भी करो, मुझे उससे क्या मतलब है। तुम्हारा तो मैं राजा हूं ना, मेरे सामने तो भाई हाथ जोड़ करके तुमको बोलना चाहिए और तुमको मेरे सामने वो बात बोलनी चाहिए जिस बात में मेरे नाराजगी ना हो। उपचारेण वक्तव्यम, शिष्टता से बोलो। तुम मुझे डरा डरा करके क्यों बोलते हो। तुमको साव मर्दम तो यद वाक्यम, तुमको मेरे को बड़ी चिकनी चुपड़ी और मीठी बात कहनी चाहिए कि जो मुझे प्रिय लगे, एक एक बात पर मेरा हृदय कमल खिल जाए, ऐसे तुमको कहना चाहिए। जिस बात को राजा सुनना नहीं चाहता है उस बात को तुम्हें नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि राजाओं की एक सबसे बड़ी कमी होती है कि राजा लोग मान के बड़े भूखे होते हैं। मारीच हमारे को मान चाहिए, हम जितना मान दोगे उतना ही हम प्रसन्न होंगे। राजा के पास पांच चीज होती है मारीच। एक तो अग्नि की उष्णता रहती है, एक इंद्र का पराक्रम होता है, एक चंद्रमा की शीतलता होती है, क्षमा भाव होता है राजा में, एक यमराज का दंड होता है जो अपराधियों पर लागू होता है, और एक वरुण जैसी प्रसन्नता होती है। कोई मान करता है और कोई आदर करता है, कोई चापलूसी करता है, कोई चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो वो प्रसन्न होता है। ये पांच देवताओं के पांच गुण राजा में होते हैं, इसलिए राजा लोग जो है खूब अच्छे ढंग से शासन किया करते हैं। राजा सब अवस्थाओं में मान्य होता है। तुमने धर्म की तरफ विचार नहीं किया कि हमारा धर्म क्या है। मारीच तुमने दूसरा धर्म बताया है, रावण के धर्म के विषय में तुमने विचार नहीं किया। रावण का धर्म है भुजबल, रावण का धर्म है शस्त्र बल, रावण का बल है धन बल। तो भुजबल हो, धन बल हो, शस्त्र बल हो, यही भाई रावण का सबसे बड़ा धर्म होता है। इस धर्म के सामने दूसरे धर्म किसी काम के नहीं है। अभ्यागतं च दौरात्म्यात् परुषं वदसी दृशम्। मैं तुमसे गुण और दोष के विषय में नहीं पूछा था, मैं तुम्हारा चेला बनकर के यहाँ नहीं आया हूँ, मैं राजा बनकर के तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इसलिए राजा बनकर के जो मैं तुमको आदेश देता हूँ उस आदेश का तुमको पालन करना होगा। देखो सीता के हरण के लिए मैं जाना चाहता हूँ, तुम मेरी सहायता के लिए चलो। तुम माया से मृग बनो, सोने के मृग बनो, चांदी के छपके उसमें लगाओ, आश्रम के पास में तुम घूमते रहो, सीता की नजरों में विशेषता से तुम आओ और सीता को ऐसा लुब्ध करो, अपनी चेष्टाओं से, अपने पैरों की चेष्टा से, अपनी पूंछ की चेष्टा से और अपने अपने मुख की चेष्टा से सीता को देखो, सीता की तरफ जाओ। सीता जब तुमको पकड़ने लगे तुम उछल के आगे चले जाओ और आगे जाकर के फिर वापस यूं सीता को देखो। ऐसे करते करते सीता का एकदम तुम अपने में मन लगवाओ, और जब सीता स्वयं तो तुमको पकड़ न सके तब सीता अपने राम से ही कहेगी आनयम लेनम, इसको ले आओ, इसको ले आओ। ऐसा जब ये सीता बोलेगी तब तुम जो है राम को छलने के लिए उछलते हुए कूदते हुए दिखते भी रहो दूर भी रहो, दिखते भी रहो दूर रहो, ऐसे करके बहुत दूर ले जाओ। बहुत दूर ले जाने के बाद वो तुम्हारे बाण लगाएगा। बाण लगाते समय में राम की आवाज में हे सीते, हे लक्ष्मण, इस प्रकार से तुम जोर से आवाज करना, ये काम तुम्हारा हमारा करना पड़ेगा। देखो मृत्यु तुम्हारी दोनों तरफ से है मारी, तुम तो मेरी मृत्यु मुझे बताते हो, राम के बाण से भी तुम्हारी मृत्यु है, और यदि ये काम तुमने नहीं किया तो तलवार दिखा के कहा ये भी तुम्हारी मृत्यु है। अब बताओ दोनों मृत्यु में तुमको कौन सी मृत्यु पसंद है, तलवार हमारी। यदि ऐसा कर दोगे तो राज्य से अर्धम प्रदास्यामि, मैं राज्य का आधा भाग तुमको दे दूंगा। और जो है यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तलवार मेरे पास है कि अब राज्य का आधा भाग भोगेगा कौन। प्राप्य सीताम अयोध्येन, मैं बिना युद्ध के सीता को प्राप्त करके लंका में आ जाऊंगा। यहाँ आने के बाद जो है जो मुझे करना है मैं कर लूंगा, मेरे बल के विषय में तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी कौन सहायता करने वाले हैं, कौन सलाह देने वाले हैं, इस विषय में मैं पूर्ण रूप से समर्थ हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें तो बस केवल मेरी आज्ञा का पालन करना है। आसाद्य तम जीवित संशयस्ते मृत्युर्ध्रुवो यद्य मया विरुध्यत है। देखो तुम्हारे सामने दोनों प्रकार से मृत्यु है, दोनों मृत्यु में से तुम किसको चुनते हो वो तुम चुनो। नोचेत करोषि मारीच हन्मि त्वाम अहम अद्य वही, आज मैं तुमको मार सकता हूँ लेकिन तुमको अभी मैं पूरा का पूरा समय देता हूँ। उस समय के अनुसार मैं तुम्हें फिर बताता हूँ कि तुम्हें आगे ऐसा काम जो है मेरे को उपदेश देने का काम नहीं करना चाहिए, और मैं कहूँ वैसा काम करना चाहिए। रावण ने जब इस प्रकार से आज्ञा दी तो मारीच ने फिर कहा, हे महाराज आपको ऐसा खोटा उपदेश किसने दिया है? मुझे तो आप मृत्यु का डर बताते हो, कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ मरना है और वहाँ मरना है, पर मरने से पहले पहले मैं आपको कम से कम ये बता तो दूं कि आप जो काम करने जा रहे हो वो उचित है कि नहीं। आप अपने पुत्रों का नाश, मंत्रियों का नाश, संबंधियों का नाश, लंका का नाश क्यों कराते हो? या तो आप लंका के शत्रु हो या कोई आपका लंका में शत्रु बैठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने भी आपको ये सलाह दी उसके पास अकल नहीं है। यदि मंत्रियों ने आपको सलाह दी है तो मंत्रियों को जाकर आप फांसी की सजा दे दो, और मंत्रियों ने सलाह नहीं दी है और आप अपनी तरफ से स्वयं ही कामचारी बन करके ऐसा काम कर रहे हो तो मंत्रियों को चाहिए कि आपको कैद खाने में डाल करके रख दे। जो राजा धर्म अर्थ काम और यश के विपरीत काम करता है वो राजा वास्तव में कैद खाने में डालने योग्य होता है, और जो मंत्री लोग अपने स्वामी के ऊपर विपत्ति आती है और उस विपत्ति के अंदर और ज्यादा उसको विपत्ति में ही देखते रहते हैं, वे सब मंत्री लोग भी दंड के पात्र होते हैं। सब अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए पहला काम होता है। राज्यम पालय तुम शक्यम न तीक्ष्णेन निशाचरे, रावण सब जगह आप अपना क्रोध मत दिखाओ, सब जगह लोगों से विरुद्ध मत रहो, सबसे अविनीत बनकर के मत रहो, आखिर भाई तुमको सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। विषमेशु रथा शीघ्रम मंद सारथे हो यथा, देखो जिन मंत्रियों की सलाह अच्छी नहीं होती है वे मंत्री राजा को इसी प्रकार से दुख में पटक देते हैं जैसे उबड़ खाबड़ रस्तों में रथ गया हुआ जो है सारथी सहित रथी को नीचे पटक देता है। दूसरे के अपराध से आप अपने अंदर किसी प्रकार का दुख मत ले, अवश्य विनाश होगा रावण, अवश्य विनाश होगा। आज मेरी बात आपको बहुत बुरी लग रही है लेकिन कभी आपको मेरी बात को ऊपर विचार करना पड़ेगा। रावण तुम्हारी दशा बहुत खराब होगी, रावण तुम्हारे सिर पर मौत नाच रही है, मैं अपनी आंखों से तुम्हारी मौत देख रहा हूँ। रावण राम के दर्शन से ही अनेन कृत कृत्योस्मि, तुम्हारे तो एक ही बात मुझे अच्छी लग रही है कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि राम के पास जाओ, राम के पास जाओ, राम को छल करके तुम राम को ले जाओ, राम के बाण खाओ, ये बात तो मुझे तुम्हारी एक ही बात अच्छी लगी है। मैं तो राम के दर्शन से कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं तो अपना कल्याण कर लूंगा, लेकिन रावण तुम्हारा बड़ा भारी नुकसान होगा। यदि तुम सीता को ले आए तो तुम्हारी लंका और तुम्हारे राक्षस बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं फिर तुमको हितेशी होकर के मना करता हूँ, या तुम विचार कर लो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे तो बड़ा लाभ है, मैं तो राम के पास चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बड़ा नुकसान होने वाला है। मारीच की ये बात सुनकर के रावण ने कहा कि मारीच बस तुमने ये कह दिया ना कि मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, बस मैं इतनी बात सुनता हूँ और बात तुम्हारी नहीं सुनता, चलो मेरे साथ और बैठो मेरे साथ इस रथ में और रथ में बैठ करके चलो। मारीच को रथ में बैठाया और रथ में बैठाने के बाद अब उसने कहा यूं पीठ पर हाथ फेरते हुए, मारीच तुम क्या सोच रहे हो? तुमने राम का पराक्रम तो देखा है, मेरा पराक्रम तुमने नहीं देखा। नहीं रामम पराक्रम्य जीवन जीवन प्रति निवर्तते। देखो मैंने तो राम का पराक्रम देखा है, मेरा पराक्रम तुमने देखा नहीं। ये जो तुम बोलते हो मेरा पराक्रम देखने का यही समय है। जिस समय को तुम मना कर रहे हो यही वो समय है। अब तुम मेरे पराक्रम को देखना। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं कितनी युक्ति से काम कर रहा हूँ, सीता का चुपचाप हरण करके ला रहा हूँ, तो युद्ध से मैं टल रहा हूँ। मेरे राक्षस कहाँ मरेंगे? राक्षस तो युद्ध करने से न मरते हैं। मैं यदि रावण खरदूषण के समान राम के सामने जाऊं राक्षसों को लेकर, तब वो राक्षस को मारेगा। अरे मैं तो चुपचाप जा रहा हूँ और रावण को, उन्हें राम को और लक्ष्मण को मैं अलग करके चुपचाप सीता को लाकर लंका में रख रहा हूँ। तो मैं बिना युद्ध के सीता को लाकर त्रिलोकी का राजा बन जाऊंगा, सबसे श्रेष्ठ बन जाऊंगा। और राम है वो सीता के वियोग में दुखी होकर के मर जाएगा और राम के वियोग में लक्ष्मण मर जाएगा। बिना शस्त्र के मैं जो विजय का उपाय सोच रहा हूँ इसमें तुम जरा से भी विचार नहीं करते हो। मेरी कितनी बुद्धि है, क्यों मैं इसमें दूसरों की सलाह लूं? मुझे इस मार्ग में बिल्कुल औचित्य प्रतीत होता है। मारीस ने कहा कि अब क्या करें, जब मैं आ ही गया हूँ तब फिर अब जो है आ ही गया हूँ, लेकिन आपकी बुद्धि खोटी है। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही सब कुछ नहीं होता।